खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का इत्मीनान आप सबके साथ हो। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत, अपनी हौसला अफज़ाई और खुदा के मकसद और मंसूबे को जानने से पहले आए हम सब खुदावंद के हजूर झुकें और दुआ करें और उससे हिकमत और दनाई मांगे, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें उसके पाक रू की रहनुमाई से हो और हम सब कम होते जाएं और वो बढ़ता जाए। आए हम दुआ करें। बहरोबर के खालक और मालक, आसमान और ज़मीन के बादशाह और मसीह यसू में हमारे बाप अब्बा, इस वक्त तेरे हजूर आते हैं और तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदा उन खुदा तेरे वादे सच्चे हैं, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा पाक रूह हर वक्त हमारी मदद के लिए दस्तियाब है। सो आज जो कुछ भी हम सीखें, हमारे कानों की खिड़कियों को खोल, हमारे दिलों को नरम कर, हमारी अक्लों को खुदा खुदा रोशन कर, ताकि तेरा बेटा यसुम सी नाम हमारी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। उसी के पाक और मुकद्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, मेरे साथ निकालें इफ़्सियों 2 बाप उसकी 10वीं आयत। आज हम 10वीं आयत में से सीखेंगे। इससे पहले कि सीखें, आप सबको याद होगा कि खुदावंद दुआओं का जवाब देने वाला है और खुदावंद ने दुआओं का जवाब दिया। और भाई विक्टर के बारे में आप सबको पता है कि वो वापस आ गया है अपने घर में। तो खुदावंद की तारीफ हो। और आप सबके लिए हजारों हजार लोग जिनको मैं भी नहीं जानता, आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी सलामती के लिए, आपके ईमान की मजबूती के लिए, आपके ईमान की बढ़ोती के लिए दुआ करते हैं। और याद रहे कि आपका ईमान बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस है, इसलिए इस अमान में कायम रहें, कभी भी सुस्त ना पड़ें, कभी भी हौसला ना छोड़ें। बेशक इम्तहान, बेशक परेशानियां, बेशक बीमारियां, बेशक हमारे जहनों में बहुत से ख्यालात उठेंगे और हम सोचेंगे कि लगता है कि खुदावंद हमारी तरफ से फिर गया है, लगता है कि खुदावंद ने हमें छोड़ दिया। लेकिन याद रहे कि खुदावंद का वादा है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ूंगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इफ़्सियों 2 बाप उसकी 10वीं आयत में से आज मैं चाहता हूं कि हम सीखें और फिर आने वाले दिनों में इसमें से वो गहरी सच्चाई और बातें सीखें। सो पालूस रसूल यहाँ पर अपने सुनने वालों को, इफ़सस की कलीसिया को, जिसमें से आज हम सीख रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, जिसे खुदा की सांस, खुदा की अकल, खुदा की सोच, खुदा का मुंह बोला हुआ कलाम कहा गया है, वो हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम तरबियत और नसीहत हासिल करें। सो आज हम देखेंगे कि पालूस यसूल यहाँ पर क्या कहता है 10वीं आयत में, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और यसु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इस आयत को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे और इसमें से सीखेंगे। पालूस रसूल यहां पर कहता है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि खुदावन खुदा खालक है, वो पैदा करने वाला, वो खलक करने वाला, वो हमें वजूद देने वाला है, जिसने आसमान और जमीन सब कुछ पैदा किया। और यहाँ पर पालूस रसूल जो आपकी और मेरी तवज्जो दिलाना चाहता है, और मैं चाहता हूँ कि इस बात पर गौर करें, पालूस कहता है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। ये खुदा बाप का वो रूहानी काम है जो हम में वकू परीजा हुआ, यानी कि हम में वो काम जारी हुआ। और ये काम क्या है? नई पदैश, क्योंकि पिछले बाब के हिस्सा में पालूस रसूल पिछली 9 आयात में वो इस बात को वाज़ह कर देता है कि हम रूहानी तौर पर क्या थे? मुर्दा थे, हम खुदा से दूर थे। हमें खुदा के रहम और मोहब्बत के बायस जिंदा किया गया, हमें नया मकाम मिला खुदावंद यसु मसीह में, हमें नई पहचान मिली खुदावंद यसु मसीह में, और सबसे बड़ी वो बात कहता है कि हमें निजात मिली, दोजक की आग से रहाई मिली। किस तरह? किसी अपने काम के बायस नहीं, बल्कि खुदावंद के फजल, खुदा के तोहफे से, खुदा की बख्शिश से। क्योंकि वो कहता है 9वीं और 8वीं आयत में कि ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने निजात कमाई है। सो निजात किस तरह मिलती है? ईमान से। लेकिन यहां पर हमने देखा और सीख रहे हैं कि पालूस कहता है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं। कारागरी से मुराद हमें बनाया गया, हमें नया वजूद दिया गया, हमें दोबारा पैदा किया गया, खलक किया गया, तखलीक किया गया, जिसके बारे में पालूस रसूल कहता है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मैं चाहता हूं कि इस बात पर गौर करें और फिर हम अगले हिस्सा को देखेंगे और सीखेंगे। दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 17वीं आयत में पालूस रसूल इस बात को बयान करता है कि हम उसकी कारागरी हैं, वो खुदावंद खुदा है जिसने ये महारत का काम किया। जैसे कोई जब कुर्सी बनाता है तो वो क्या कहते हैं कि ये फलां फर्नीचर की दुकान से बनी है। मिसाल के तौर पर भाई भट्टो जो हमारी बस्ती में है, वो फर्नीचर का काम करता है। अगर वो कोई शय बनाएगा तो क्या लोग कहेंगे कि भाई भट्टो ने इसे क्या किया है, बनाया है, उसने कारागरी इस पर की है, इस पर काम किया है, तो वो किसकी ईजाद हुई? उसकी। इसी तरह रूहानी तौर पर खुदा बाप है जिसने हमें ये नई पैदाइश, नई नई पहचान, नया नाम और नई 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 हमें शिनाख्त दी है। और इसको किस तरह हम हासिल करते हैं? दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 17वीं आयत में, इसलिए अगर कोई मसीह में है, यानी कि जिसने मसीह को कबूल किया है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नई आजाद, नई पैदावार, नई मखलूक। पुरानी चीजें जाती रहीं, वो यहां पर बयान करता है वो तमाम पुरानी चीजें, वो तमाम पुरानी जिंदगी का रिकॉर्ड जो गुनाहों की बड़ी फरिश्त हमारे नाम थी, वो जाती रही। देखो वो नई हो गई, पुरानी चीजें जाती रहीं, हम नए हो गए, नई जिंदगी, नई पैदाइश, नया मौका और खुदावंद में नई शिनाख्त, नया मंसूबा। सो देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें क्या थी? हम गुनाह के मतहत थे, हम दोजक के क्या थे? फर्जंद थे, हम शैतान के पैरोकार थे। लेकिन अब क्या है? यीशु मसीह के पैरोकार। नई जिंदगी, नया मकाम, नया आसमान, नई हालत। सो इस बात को सिर्फ आप तक वाजिया करना चाहता था कि पालूस रसूल ने क्यों कहा, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं, यानी कि नई मखलूक। आप ऐसी मखलूक हैं जो रूहानी मखलूक हैं। खुदावंद यीशु मसीह आप में रहता है, खुदा बाप आप में रहता है, खुदा पाक रूह आप में रहता है। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं, बाइबल के हैं। पहला करंथियों 3 बाप उसकी 16 आयत, पहला करंथियों 3 बाप उसकी 19वीं आयत, गालबन 19वीं और 20वीं आयत, वहां पर लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो, उसके रहने की जगह। सो ये बात हमने जान ली कि हम उसकी कारागरी हैं और उसने हमें पैदा किया और नई पैदाइश और नई पहचान दी। रूहानी तौर पर हम नए बनाए गए हैं। सो किस मकसद के लिए? पालूस रसूल कहता है, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और यसु मसीह में, यसु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। दूसरा हिस्सा, नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। बहुत से लोग इस हिस्से को भुला देते हैं, इस हिस्से पर गौर नहीं करना चाहते। आज बहुत से मसीही हैं जो निजात के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन निजात के बाद वो कुछ भी नहीं करना चाहते। और आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, बहुत से मसीही ईमानदार हैं जो अपनी जिंदगी सारी हयाती, जिसे कहते हैं, वो बेकार बातों में गुजार देते हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा पालूस कहता है कि हम इसलिए मखलूक हुए कि उन नेक अमाल को करें, उन नेक कामों को करें। किस लिए? निजात हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यसु मसीह की नुमाइंदगी करने के लिए, यसु मसीह की जिंदगी को जाहर करने के लिए, यसु मसीह को जाहर करने के लिए। इसीलिए गिरजाघर बनाए गए हैं, इसीलिए हमें कलीसिया कहा गया है, इसीलिए कलीसिया में जरूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, इसीलिए कलीसिया में जरूरत है कि बेवाओं की मदद की जाए, इसीलिए जरूरी है कि दुनिया के कोने कोने में खुदा का कलाम पहुंचाया जाए, ताकि हम नूर की मानद चमकें। लेकिन ईमानदार, बड़े दिन पर और ईस्टर पर चर्च में जाना पसंद करते हैं, या फिर अगर कोई जरूरत हो तो उनको बार बार कहा जाए तो फिर वो अपना रुपया पैसा देते हैं अच्छे काम के लिए। और वो रुपया पैसा किस तरह देते हैं? मजबूरी की हालत में, खुशी के साथ नहीं। लेकिन याद रखें, बाइबल कहती है, इस बात को ही ले लें, कि हम यसु मसीह में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, पैदा हुए, हमें उसने बनाया। किस काम के लिए? बहुत से काम हैं, आगे चलकर हम देखेंगे कि बेवाओं की मदद है, कलीसिया को, चर्च को रोजमर्रा चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, दूसरे लोगों तक जाने की जरूरत है, भूखों को उनकी देखभाल करने की जरूरत है, खुदा के कलाम की खुशखबरी दूसरे लोगों पर ले जाने की, दूसरे लोगों तक ले जाने की जरूरत है, कैदियों को इत्मीनान और तसल्ली का पैगाम देने की जरूरत है, बुत प्रस्त लोगों को बताने की जरूरत है कि यसु मसीह ही राह और हक और जिंदगी है। हम इस जमीन पर नेक अमाल के वास्ते निजात के बाद, हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि खुदा बाप की मर्जी को पूरा करें। मेरे साथ एक हवाला निकालें, मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप। यहां पर खुदावंद यसु मसीह के ये अल्फाज हैं, और यसु मसीह ने क्या कहा है ईमानदारों को, 13वीं आयत में, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाए। यसु मसीह ने ये सवाल उन तमाम लोगों से किया जो उसको सुन रहे थे, पहाड़ी वास जिसे कहा गया है, पहाड़ के ऊपर यसु मसीह तालीम दे रहा था। और क्या कहा है? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के कदमों के नीचे रौंदा जाए। सादा सी बात है, अगर नमक में जायका ना हो तो हम क्या करते हैं? उसे बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो बेकार है। इसलिए पालूस रसूल कहता है, हम नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। यहां पर यसु मसीह कहता है, तुम दुनिया का नमक हो। आगे चलकर देखेंगे कि नमक किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। और 14वीं आयत में, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। तुम दुनिया का नूर हो, और जो शहर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ हो वो किसी से छुप नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे शहर में टावर है, टेलीफोन का टावर है और वो हमें दूर ही से नजर आ जाता है और वो छुप नहीं सकता। इसी तरह हम भी ईमानदार दुनिया का नूर हैं और उस शहर की मानद हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, छुप नहीं सकता। और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। बहुत दफा हमारी मसीही जिंदगी चिराग की मानद अंधेरे को दूर करने के लिए नहीं बल्कि बहुत दफा हम घुटन में जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन यहां पर जो बात 16वीं आयत में यसु मसीह ने कही वो ये है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर ना के बुरे कामों को देखकर कहें कि ये मसीही हैं, ना के लड़ाई फसाद झगड़ा नशा और बुत परस्ती को देखकर कहें कि वाह क्या खूबसूरत मसीही लोग हैं। बहुत दफा हम इसी बात से जाने जाते हैं क्योंकि हम में फसाद पाया जाता है और कहते हैं ओ मसीही लोग उनकी तो आपस में नहीं बनती, वो क्या मसीह की मनादी करेंगे। अगर आज हमारी ऐसी हालत है तो हमें बदलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। खा कोई बेटी है बेटा है, मुझे आपको हम सबको बदलने की जरूरत है क्योंकि लोग दुनिया के लोग हमें देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, हमारी जिंदगी रोशनी की मानद चमके, दूसरों को नूर मिले ना कि हम ठोकर का बायस बने। और क्या लिखा है, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर, नेक कामों से मुराद हमारी जिंदगी में मोहब्बत फजल माफी रहम तरस पड़ोसी के साथ मोहब्बत एक दूसरे को बेहतर जानना यीशु मसीह के हुक्मों पर चलना भूखों की देखभाल करना जब कोई जरूरतमंद हो तो उससे कहना भाई और बहन क्या मैं तेरी किसी तरह मदद कर सकता हूं कर सकती हूं, ना के इन तमाम बातों को छोड़ो हम नहीं उसे जानते, उससे सा उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे किसी करीबी रिश्ते से नहीं। याद रखें सबसे अहम रिश्ता क्या है, कलीसिया। बहुत सी बातें हैं लेकिन आगे चलकर सीखेंगे, वक्त बहुत थोड़ा है। ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आगे चलकर हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी खुदा बाप की इज्जत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है या फिर लोग कहते हैं कि तोबा तोबा तोबा। मसीही लोग, मैं मसीही नहीं होना चाहता क्योंकि उनका बैठना उठना बोलना और उनमें कोई मोहब्बत जैसी बात नजर नहीं आती। सो हम इस जमीन पर नेक अमाल करने के वास्ते मखलूक हुए हैं, नई पैदाइश। सो हम खुदा के जुड़ चुके और दुआ करें। आइंदा दिनों में हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि हम इस जमीन पर क्यों हैं। दुआ करेंगे। खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से हम सबको अपने बेटे की सूरत और शक्ल पर ढलना सिखा ताकि उसकी नक्शे कदम पर चलें और तेरी रोशनी हम में नजर आए और हर एक तेरी तमजीद करे, ना के तेरी तेरी तहकीर और तेरे नाम की बेइज्जती करे। सो हम तेरी इज्जत का बायस बने ना के तेरी बेइज्जती का। हम सबको छू बड़ी बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। आमीन।